بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى عجل حاج ولعنة الله على أعدائه من لعنة إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة زنقا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ایام عزا کی آمد آمد ہے، اور جو ایام ایام عزا سے نزدیک ہیں کہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یقیناً ہم اور آپ ان ایام سے آشنا ہیں. منبر حسینی سے ایام عزا کے دوران ان ایام کی نسبت کہ جس سے ہم اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں بہت کچھ بیان ہوتا ہے. خلاصہ، مکے سے کربلا تک کا سفر شروع ہو چکا، بلکہ کربلا پر یہ کاروان پہنچا چاہتا ہے. اذان محترم، عنوان اسی حوالے سے ہے کہ کربلا کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، کسی بھی شے کی حقیقت اور ماہیت کو اگر ہم اور آپ جاننا چاہیں تو بغیر کسی ریشے کے اور بنیاد کے اور مبنا کے اس چیز کی حقیقت کی نسبت گفتگو کرنا گویا اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے ہم اور آپ اردو زبان میں ایک محاورہ اکثر سنتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں کہ ہوا میں گفتگو کرنا ہے. لہذا اس قسم کی نشستیں مقصد کے تحت، ہدف کے تحت، اور وہ بھی بلند اہداف کو پانے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں. ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ رسماً ہماری اور آپ کی نشست یا اس قسم کی نشستیں نہیں ہونا چاہیے کہ شاید، بلکہ یقیناً ہماری اور آپ کی اس قسم کی نشستیں جو رسماً ہوا کرتی ہیں، اس رسمی نشستوں نے یا ان رسمی نشستوں نے ہمیں اور آپ کو حقیقت سے دور رکھا ہے. بات آئی اور گئی ہو جاتی ہے اور ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ جس مقصد کے تحت جو ٹاپک سامنے رکھا ہے، جو عنوان سامنے رکھا ہے، اس کی نسبت ہمیں اور آپ کو صرف الفاظ کی حد تک معلومات فراہم ہوتی ہیں، پس پردہ क्या चीज है हमें और आपको सा अंदाजा नहीं होता। बहुत माजरत के साथ अफसोस सद अफसोस कि दो सवा दो महीने आजादारी होती है लेकिन आई और गई हो जाती है। बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि हमें और आपको उससे इस्तेफादा करना होगा कि वाजिब है और लाजिम, लेकिन जब तक किसी भी अमल की निस्बत उसके लुजूम और उसके वजूब के लिहाज से इत्तला ना हो तो इंसान अपने आप को उस अमल की निस्बत जुम्मेदार ख्याल नहीं करता। लिहाजा हमें और आपको सबसे पहले मरहले पर इस चीज की निस्बत ईमान और यकीन रखना होगा कि करबला क्या चीज है और मानिंदे करबला जो हकायक हैं वो क्या हैं, कि नतीजतन करबला की निस्बत हमारी और आपकी जिम्मेदारियां सामने आए कि जिसका नतीजा हम और आप अपने आप को जिम्मेदार उन्वान से ख्याल करके पेश कदम हों। बहुत मुख्तसर पाबंद किया गया है मुझे, ज्यादा से ज्यादा अगर मेरी गुफ्तगू रहे तो 45 मिनट। तो मैंने आते ही जब मुझे अभी लेने आ रहे थे 10 मिनट पहले, तो रास्ते में मैंने कहा कि ये जुल्म है और मुर्तजा यूथ से जुल्म दूर है, इसलिए कि मुर्तजा यूथ वो तंजीम है या वो गैदरिंग या वो उन अफराद का इज्तिमा है कि जो मजलूम है और मजलूमों की हिमायत के हवाले से तश्कील दिया गया है। बहरहाल मैंने जोक किया, बहरहाल आमर है, कोशिश मेरी यही रहेगी। मैं मौलाना से दरख्वास्त करूंगा कि अगर वो आगे तशरीफ ले आए तो बेहतर होगा। सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, बुलंद आवाज से सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। शायद कि आपको मुलाहिजा करते हुए 45 मिनट पर गुफ्तगू तमाम हो जाए इंशाल्लाह। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ान मोहतरम, करबला शनासी के हवाले से हम और आप यहां यकजा हुए हैं और जमा हुए हैं। करबला की शनाख्त मुमकिन नहीं जब तक साहिब करबला की शनाख्त ना हो। साहिब करबला कौन? साहिब करबला आया हुसैन इब्न अली, आया एक इंसान, आया एक शख्स इब्न फला, या साहिब करबला एक इंसान एक शख्स उसका नाम नहीं। बहुत तवज्जो का तालिब हूं। मैंने पहले ही अपनी तमहीदी गुफ्तगू में अर्ज किया कि रस्मी गुफ्तगू नहीं होगी। साहिब करबला कौन? आया जिसे हम और आप जानते हैं हुसैन इब्न अली के नाम से, या दूसरे अल्फाज में जिसे हम जानते हैं कि इंसान कि जो किसी का फर्जंद है, या ऐसा इंसान कि जिसको हम और आप अपनी जबान में कहते हैं शख्स, या नहीं, बल्कि साहिब करबला एक शख्स एक इंसान और हुसैन इब्न अली का नाम नहीं, बल्कि साहेब करबला शख्सियत का नाम है, इंसानियत का नाम है और हुसैनियत का नाम है। मुमकिन है आपके अजहान आलिया में ये सवाल आए, इंसान और इंसानियत में फर्क क्या है, हुसैन इब्ने अली में और हुसैनियत में क्या फर्क है, शख्स और शख्सियत में क्या फर्क है। थोड़ा सा अगर हम और आप तदब्बुर से काम लें और तफक्कुर से काम लें तो जमीन का आसमान फर्क है, काबिले मुकायसा नहीं, कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं छोटी सी एक मिसाल पेश करूंगा ताकि उस मिसाल के जरिए से यह मफहूम जहन में बैठ जाए हमेशा के लिए, और मैं दावत फिक्र देता हूं आपको, इस बात पर गौर कीजिएगा। हम और आप तस्वीर को देखते हैं, कुबला महला किसी भी शय की अगर तस्वीर हो, बहुत मुख्तसर करते हुए किसी इंसान की तस्वीर है, लिल्ला बतलाइए कि तस्वीर में और साहेब तस्वीर में कोई फर्क है या नहीं। ला महला, तस्वीर में और साहेब तस्वीर में फर्क होता है। क्या फर्क है, थोड़ा सा अगर डीप में जाएं, मामूली सा, वो डीप नहीं कि जो कमाले डीप है, मामूली सा, क्या मालूम होगा डिफरेंस, का तस्वीर जामिद है और साहिब तस्वीर मुतहर्रिक। मुमकिन है शायद आपके जहन में ये सवाल उठे कि तस्वीर जिसकी हो ऐन मुमकिन है कि वो जिंदा हो, कि जिंदा की तस्वीर है, और ऐन मुमकिन है उसके मुकाबले पर कि शायद वो मुर्दा हो, मुर्दा की तस्वीर है। तस्वीर अगर जिंदा की है तो हमारी कैफियत कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए, ये तबीयी चीज है और फितरी चीज है। और अगर मुर्दा की है जो इस दुनिया से चल बसा है, तो उसके मुकाबले पर हमारी और आपकी हालत और कैफियत क्या होती है और कैसी होनी चाहिए। वो सीधी सी बात है, तस्वीर अगर उस शख्स की है कि जो इस दुनिया से रुखसत हो गया है, तो हमारी और आपकी कैफियत अफसुर्दगी की होती है, नाराहती की कैफियत होती है, रंजीदाए खातिर होता है दिल हमारा और आपका, अफसोस का इजहार करते हैं। बिल्कुल मुकाबले पर जिंदा की अगर तस्वीर है तो हम और आप सुकून का एहसास करते हैं कि ये सुकून दर हकीकत इजहार अगर किया जाए तो खुशी का है, खुशी का इजहार, शादमानी का इजहार होता है। खूब कहना क्या चाह रहे हैं मौलाना आप, तस्वीर और साहिब तस्वीर में फर्क है। तस्वीर साहिब तस्वीर के लिहाज से दो किस्म की है, या जिंदा है या मुर्दा। बहुत मुख्तसर करते हुए लिल्लाह बताइए, हुसैन इब्न अली सन 61 हिजरी में करबला के सानहे में इस दुनिया से रुखसत हुए या नहीं। कोई भी नहीं कहेगा कि इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए। सन 61 हिजरी में करबला का सानहा रूनुमा हुआ और इस दुनिया से आप रुखसत हो गए। 1400 साल होने को आए, बल्कि गुजर चुके, हम और आप गम मनाते हैं हुसैन इब्न अली का, लेकिन नहीं मालूम इस गम की कैफियत क्या है। और मौलाना ये पूछने की जरूरत नहीं है, غم اس کا ہوتا ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو گیا. یہیں رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے. آیا واقعاً حسین ابن علی رخصت ہو گئے؟ خوب رخصت ہو گئے. جو رخصت ہو جاتا ہے بہت معذرت کے ساتھ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کہ وہ زندہ نہیں. دوسرا لفظ استعمال نہیں کروں گا کہ جو ڈائریکٹلی جو ہے میننگ دیتا ہے. وہ زندہ نہیں. خوب جو زندہ نہیں پھر کس طرح سے ہم اور آپ آج اپنے معاشرے کے اندر طول 1400 سال کے بعد بھی حسین ابن علی کو زندہ دیکھتے ہیں؟ آخر راز کیا ہے؟ حسین ابن علی اگر جا چکے تو کیوں کر ہمیں اور آپ کو زندہ دکھائی دیتے ہیں؟ وہ راز کیا ہے؟ ممکن ہے شاید آپ کی طرف سے سوال آئے کہ یہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں، خود ہی جواب دے رہے ہیں. دلیل کیا ہے کہ 61 ہجری میں ایک شخص جا چکا اور اس کے بعد 1400 سال کے بعد اس وقت آپ کہہ رہے ہیں اس ذات کے لیے کہ وہ زندہ ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ بس یہی موقع ہے کہ اس تمہیدی گفتگو میں اس مطلب کو آپ تک منتقل کروں. حسین ابن علی کسی شخص کا نام نہیں، کسی انسان کا نام نہیں. حسین ابن علی فلاں ابن فلاں نہیں، بلکہ حسین ابن علی ایک شخصیت کا نام ہے، انسانیت کا نام ہے اور حسینیت کا نام ہے. یہ جو ہمیں اور آپ کو تصویر دکھائی دیتی ہے حسین ابن علی کی، آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب تصویر زندہ ہے. نشانیاں بتلاتی ہیں کہ صاحب تصویر زندہ ہے. کیونکہ زندہ ہے، یہ جو غم ہم اور آپ مناتے ہیں یہ وہ غم نہیں کہ جو انسان کو نڈھال کر دے. کہ ہم اور آپ روز روشن کی طرح جانتے ہیں اور واضح ہے یہ مطلب کہ یہ غم ہر سال تازہ ہوتا ہے، ہمیں اور آپ کو نڈھال کرنے کی بجائے قوت دے کر جاتا ہے، توانائی عطا کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو چاقو چوبند کرتا ہے. لیکن عزیزان محترم یہاں کہوں گا بہت معذرت کے ساتھ، بشرتہا و شروطہا، ورنہ 180 ڈگری کانٹا گھومے گا. حسینیت کا کام نڈھال کرنا نہیں ہے، چاقو چوبند کرنا ہے، آمادہ کرنا ہے. یہ ایک مطلب میں نے آپ تک منتقل کیا. ہرگز ہمیں اور آپ کو یہ تصور نہیں کرنا کہ حسین ابن علی فلاں ابن فلاں تھا، 61 ہجری میں اس کی ظاہری زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اب غم منانے کی ضرورت کیا ہے؟ غم وہ مناتے ہیں کہ جو مردہ قومیں ہوتی ہیں، زندہ قومیں وہ افسردہ نہیں ہوتی. یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر، یہ اب کا نہیں ہے. اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو طول 1400 سال میں جو کام ہوا اس پر، آج ایسے ایسے افراد کہ جن کو ہم اور آپ کہتے ہیں تعلیم یافتہ، سمجھدار، مفکر، مسلح، ان کی رائے یہ ہے کہ غم وہ مناتا ہے कि जो निडहाल होते हैं, जिनको किसी कोई चीज का कोई चीज की इत्तला नहीं होती, किसी चीज की इत्तला नहीं है उन्हें। बहादुर कौमें वो होती हैं कि जो मुर्दा अफराद के साथ नहीं होती, बहुत माजरत के साथ, क्योंकि इल्मी गुफ्तगु है। अब मुझे यकीन है कि आपके अजान मुतवज्जे हैं, साहिब फहम व फरासत हैं आप। क्या किया जाए कि हम और आप बाकायदा उस राज को जानें कि जिससे हमें और आपको यकीन, बल्कि यकीन दर यकीन के साथ इल्म हासिल हो कि करबला क्या है। ये एक मुकद्दमा। दूसरा मुकद्दमा कि जो असली गुफ्तगू के साथ मुंसलिक है, अज़ान मोहतरम, फलसफे और हिकमत में मुख्तलिफ मतालिब मौजूद हैं। आपके दरमियान वो अफराद जो फलसफे से और हिकमत से आशना हैं, वो बखूबी जानेंगे और जानते होंगे कि जो मतलब मैं आप तक मुंतकिल करूंगा, लेकिन कदर वजाहत में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा फलसफे के उस नुक्ते की जानिब कि जब तक वो नुक्ता हल नहीं होगा, जब तक वो पॉइंट और मतलब हमारे और आपके वजूद में नहीं आ जाता, वजूद से मुराद वजूद ज़हनी, और उसके बाद उसको हजम करना, उस वक्त तक चाहे करबला हो या करबला के मानिंद दूसरे हकायक, उनकी माहियत तक, उनकी हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। अज़ान मोहतरम, किसी भी चीज को मारज़े वजूद में आने के लिए फलासफा और हुकमा ये कहते हुए नजर आते हैं बिल इत्तेफाक, किसी को भी इससे इख्तलाफ नहीं कि चार चीजें जरूरी हैं किसी भी शय को वजूद में आने के लिए, कि जिनको आम जबान में हम और आप कहते हैं, अलबत्ता फलसफे की जबान में भी है, इल्लत, कि जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं कॉज, सबब का, किसी भी शय को वजूद में आने के लिए चार चीजें दरकार हैं, यानी चार इल्लतें। मैं मिसाल अर्ज करूंगा और उसके बाद फौरन डायरेक्ट हम आ जाएंगे अपने असली टॉपिक पर, करबला शनासी पर। वो चार चीजें और चार इल्लतें क्या हैं? बहुत माजरत के साथ, इल्लत फाइली, इल्लत गाई, इल्लत मादी और इल्लत सूरी, ये चार हैं। हर चीज को मारज वजूद में आने के लिए इन चार चीजों की जरूरत है। जब तक ये चारों हाथ में हाथ नहीं देंगी, साथ में साथ नहीं देंगी, वो शय वजूद में नहीं आ सकती। हमने और आपने कपड़े पहने हुए हैं, हम और आप कमीज पहनते हैं, जो भी लिबास पहनते हैं, उस लिबास की निस्बत भी अगर हम और आप जानने की कोशिश करें, यही चार चीजें मौजूद हैं। यही गिलास जो मेरे पास रखा हुआ है पानी से भरा हुआ, यही मेज, यही कुर्सियां जिस पर आप तशरीफ फरमा हैं, जो जो चीजें यहां पर हमें और आपको महसूस हो रही हैं, हर चीज के लिए चार चीजें जरूरी हैं। इल्लत फाइली थोड़ा डिफाइन कर दूं और उसके बाद मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। यानी किसी भी चीज को बनाने वाला, मारज़े वजूद में लाने वाला जरूरी है। कोई शय भी, हम और आप मुलाहिज़ा करें इसी पीराहन को, जब मिसाल दी है तो इसी को सुनते जाइए। खुद इस पीराहन को बनाने वाला कौन है? दर्जी का ये कौन है? का इल्लते फाइली है इसकी। अच्छा, अलबत्ता मुसामिहा हो सकता है इसके अंदर, लेकिन दकीकन मुलाहिजा करें तो ऐसा ही है। लेकिन इल्लत फाइली हकीकतन वही है कि जिसे पिराहन की जरूरत है, लेकिन बनाने वाला कौन है? कदरजी। ठीक, इसे कहते हैं फलसफे की जबान में इल्लत फाइली। मैं फिर जो है गुफ्तगु को रोकते हुए आपसे माजत तलब करूंगा कि अगर गुफ्तगु थोड़ी सी संगीन हो जाए तो तहमुल कीजिएगा, नतीजा बहुत ही अच्छा, जालिब और पुरकशिश है। उसके बाद दूसरी इल्लत, इल्लत गाई है। इल्लत गाई यानी बहुत आसान जबान में, उर्दू जबान में इसका ट्रांसलेशन किया जाए और मुंतकिल करने की कोशिश की जाए, किस हदफ के तहत पीराहन को और कमीज को बनाया जा रहा है। हदफ तो होगा, हर चीज का एक हदफ होता है। फलासफा उसे कहते हैं उसकी निस्बत गायत, हदफ क्या है उसका, इल्लत गाई क्या है। ठीक, तीसरा मरहला और तीसरी इल्लत, इल्लत मादी। कौन से मैटर, कौन सी चीजें इस कमीज को तैयार करने के लिहाज से जरूरी होगा, उसे कहते हैं इल्लत मादी। कौन सी चीजें दरकार हैं एक कमीज को तश्कील देने के लिए कि कमीज की सूरत में आए। आखिरी इल्लत सूरी, खुद लफ्ज से मालूम है कि जब यह कमीज तैयार होगी तो सूरत कैसी होगी। ये चार। इसी तरीके से गिलास है, गिलास बनाने वाला कौन है, का इल्लत फाइली जरूरी है। हदफ क्या है, इल्लत गाई, क्यों गिलास बनाया जा रहा है, वो किस चीज से बन रहा है, इल्लत मादी, का सूरत कैसी रहे, या ये या इस जैसी कि जिसको कहा जाए गिलास। बस अजीजों, किसी भी चीज को माराज वजूद में आने के लिए फलासफा और हुकमा ये कहते हैं ये चार इल्लतें दरकार हैं। इनमें से अगर किसी एक का भी फिकदान हो जाए और कम हो जाए तो वो शायद माराज वजूद में नहीं आ सकती। एक कदम आगे और बढ़ाऊंगा अपने टॉपिक तक पहुंचने के लिए, का जिस तरह से अफराद की तश्कील और माराज वजूद में उसके उसे लेकर आना ये चार चीजें जरूरी हैं, इसी तरह से मुआशरा, सोसाइटी, उसके अंदर माराज वजूद में आने वाले मुख्तलिफ वाकयात और सानेहात, बहुत तवज्जो का तालिब, मुख्तलिफ वाकयात और मुख्तलिफ सानेहात भी अपने अपने तौर पर इन चार चीजों के मोहताज हैं। हमारी और आपकी गुफ्तगु हो रही है करबला पर, और मैंने आगाज गुफ्तगु में कहा करबला शनासी या करबला की नस्बत शनाख्त मुमकिन नहीं जब तक साहिब करबला की शनाख्त ना हो जाए। साहिब करबला की अगर शनाख्त हो गई तो बहुत आसान है हमारे और आपके लिए करबला को पहचानना और अहदाफ करबला तक पहुंचना। सानिया करबला सन 61 हिजरी में रूनुमा हुआ। फौरन सवाल जहन में आता है कसानिया करबला एक वजूद है, नतीजतन मौजूद है, और हर मौजूद को माराज वजूद में आने के लिए चार चीजें दरकार होती हैं। सबसे पहले इल्लत फाइली, फिर इल्लत गाई, इल्लत मादी और इल्लत सूरी। करबला को तश्कील देने वाला कौन है, लामाहला ये सवाल जरूर आएगा। करबला हदफ क्या है, करबला कौन कौन से मैटर्स से तश्कील पाया है, कौन कौन सी चीजें आपस में मिली हैं तब जाकर करबला ने अपना रंग दिखाया है। बिलाखिर सूरत क्या है कि जिसे मैंने ताबीर किया रंग से। इसे जानने के लिए हमें और आपको स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीजों को देखना होगा, लेकिन इस नशिस्त की हद तक बहुत मुख्तसर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा ताकि हमारा और आपका यहां पर आना और इस इनवान के ज़ैल में गुफ्तगू को सुनना ज़ाया ना हो कि रस्मी गुफ्तगू इंसान को ज़ाया कर देती है, लेकिन हदफ के तहत अगर इंसान किसी जगह शिरकत करे और हदफ के तहत अगर गुफ्तगू हो तो वो ज़ाया होने के काबिल नहीं, काबिल गौर है। आइए सबसे पहले हम और आप तलाश करें कि करबला जब एक मौजूद का नाम है कि है ऐसा ही, तो किसने इसे तश्कील दिया, इल्लत फाइली क्या है इसकी। इल्लत फाइली हम और आप मिंबरों से सुनते हैं अक्सर और बीशतर, अलबत्ता बहुत मुख्तसर और इशारे और किनाये में, और वो बहुत मुख्तसर और इशारा और किनाया कहां पर, जब मसाइब आते हैं फजाइल के बाद, तो आम तौर पर मिंबरों से थोड़ा सा मसाइब को बढ़ाने के लिए और लोगों के जज्बात से और एहसासात से खेलने के लिए हम और आप सहारा लेते हैं, बहुत माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, क्योंकि काबिल फहम मजमा है, इसलिए इतनी साफ और शुस्ता और खुलकर गुफ्तगू कर रहा हूं। लेकिन हक यह है कि इल्लत फाइली को अगर बयान करना मकसूद हो कि करबला को किस चीज ने तैयार किया, किस चीज ने आमादा किया, किस चीज ने या किन किन चीजों ने चाहा कि करबला होना चाहिए, उसका वजूद हम और आप जानते हैं अक्सर और बीशतर। मैं चंद चीजें, क्योंकि यह अच्छा ही हुआ कि मैं नोट डाउन कर आया, वरना अगर इसी तरीके से गुफ्तगू रहती तो शायद वो 45 मिनट की बजाय 2 से 3 घंटे हो जाते। मैंने अपने आप को पाबंद करने के लिए चंद चीजें जो हैं यहाँ पर रखी हैं, और उसके बाद आपको दावत फिक्र दूंगा कि मख्तल को जाकर मुलाहिजा करें, खसूसी तौर पर हुसैन इब्न अली की सीरत को मुलाहिजा करें अव्वल से लेकर आखिर तक। और जितनी चीजें मैं आपके सामने बयान करूंगा, मुझे यकीन है कि आप सुन चुके हैं, लेकिन नए अंदाज से गुफ्तगू आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। इल्लत फाइली, करबला को माराज़े वजूद में लाने वाली चीजें चंद हैं। सबसे पहली चीज बैत का तकाजा, सब जानते हैं हमारा का मौलाना, नई बात नहीं कर रहे हैं आप। बैत का तकाजा क्या है, मैं इशारा करूंगा। जब बैत का तकाजा हुआ, हमारा आप सब जानते हैं, मसाइब में सुनते हैं हमारा, चंद दिनों के बाद मसाइब सुनेंगे हमारा आप भी, कि बैत का तकाजा हुआ और मौला को जलाल आया उस वक्त के जब मौला की निस्बत कुछ कहा गया। मौला का या किसी इंसान बाहक का उस मकाम पर कि जब किसी जालिम की निस्बत एक इंसान वाकई से बैत लेने का तकाजा अगर किया जाए, तो उसकी सूरत और कैफियत कैसी होती है। मौला ने खामोश रहना गवारा नहीं किया, सुकूत को तोड़ा, और जो कुछ कहा हम और आप सब जानते हैं। एक जुमला सिर्फ अर्ज करूंगा कि जो तमाम मकातिल ने उसे जो है कोट किया है, कम उससे बैत का तकाजा करते हो, किसके लिए और किसके हक में, यजीद के लिए। रजुलुन शारिबुल खमर व कातिलु नफ्सिल मुहतरमा व मुअलिनुन बिल फिस्क व मिस्ली ला युबायो मिस्ला। यहां से आगाज हुआ है इल्लत फाइली के लिहाज से और मुंतही हुआ असल तहर्रुक, अगरचे मक्का छोड़ा नहीं है, मदीना छोड़ा नहीं है। मदीना छोड़ने से पहले हम और आप सब जानते हैं मरवान लईन किसी एक मकाम पर मौला से दूसरे दिन मिलता है और उसके बाद बैत के हवाले से कहता है, और मौला ने उस वक्त जो है बरजस्ता जवाब दिया है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन वालल इस्लाम या सलाम इज़ा बुलियतिल उम्मतु बिराइन मिस्ल यजीद। तर्जुमे से भी वाकिफ हैं हम और आप, सिर्फ तयम्मुन और तबर्रुकन ताकि तश्ना ना रह जाए नशिस्त हमारी, इस तर्जुमे के लिहाज से। कलमा इस्तरजा पढ़ा और उसके बाद कहा, ऐसे इस्लाम पर सलाम हो कि जिस इस्लाम की रहबरी यजीद जैसे के हाथ में हो, कब मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, मुझ जैसा कहा। और हमारा आप सब जानते हैं, बारहा सुनते हैं अक्सर जाकिरान अहले बैत इस जुमले को कोट करते हैं और बार बार तकरार भी करते हैं। बस मुझे खाली ये बतलाना मकसूद है अपनी गुफ्तगू के उसमें कि जो तमहीद मैंने बांधी, मिसली ला युबायो मिसला, ये क्या चीज है? ये खूब अच्छे तरीके से निशानदेही करता हुआ जुमला नजर आता है कि हुसैन इब्न अली किसी चीज को मारज़े वजूद में लाना चाहते हैं कि जिसे हम और आप कहते हैं अब लावा पक चुका है, बस फटा चाहता है, उभरने वाला है। मैंने फटने का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि हमारा आप सब जानते हैं इल्लत फाइली का दूसरा अंसर और फैक्टर कि जिसको जो है इल्लत फाइली के साथ प्लस किया जाए इस नुक्ते के साथ कि बैत का तकाजा एक और प्लस अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर, ये दो हमारा आप सब जानते हैं। मैं इशारा करूंगा उस वक्त के जब जो है आप मदीना छोड़ रहे थे वसीयतनामा इन्नी उरीदो अनाम और बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर, किस बुनियाद पर कहा? हां, सैयद शुहदा को अपने बाबा की वसीयत याद थी, शहादत के बिस्तर पर 21 माह रमजान की शब को, हमारा आप सब जानते हैं छोटा सा जो है वसीयतनामा कहें नसीहतनामा कहें मौइज़ा कहें, वहां पर दो जुमले कहे हैं मौला ने, लाता तुरुकु अल अम्र बिल मारूफ व नहय अनिल मुनकर फयवल्ला अलैकुम अशरारकुम औ शिरारकुम सुम्मा तदउना फला युस्तजाबु लकुम। मुझे यकीन है इसके बारे में भी जो है आप आशना है तर्जुमे की हद तक, कहा मेरे फर्जंदों ऐशी हो, इसलिए कि जमा का सीगा है, लाथत रुकू ए मेरे दो फर्जंदों और मैं मेरी तमाम शियों, जिस तक ये मेरा जो है खिताब पहुंचे ये खत पहुंचे, ए मौला क्या चाहते हैं? कहा हरगिज अम्र बिल मारूफ और नहीं मुनकर को तर्क मत करना, क्या होगा? कहा अगर तर्क कर दोगे और उसके बाद अगर तुम पर मुसल्लत हो गए तुम्हारी माशरे के बदतरीन अफराद, तुम दुआ करोगे कि जान छूट जाए उनसे, लेकिन दुआ मुस्तजाब नहीं होगी। बिलाखिर सैयदुल शहदा मक्के से जब चले हैं मदीना से मक्का और मक्के से चले हैं करबला पर मुंतही हुआ यह सफर, दौरान सफर एक मंजिल के दौरान मशहूर और मारूफ एक कलाम आपने इसी हवाले से जो है अदा किया, अला तरौना अन्नल हक्का ला युअमलु बिह व अन्नल बातिला ला युतनाहा अन लियरगबल मोमिन फी लिकाइल्लाह मुहिक्का। क्या तुम मुलाहिजा नहीं कर रहे हो? क्या अम्र बिल मारूफ नहीं हो रहा और नहीं अल मुनकर नहीं हो रहा, यानी हक पर अमल नहीं हो रहा और बातिल से रोका नहीं जा रहा? मौला ने आखिरी जो मतलब कहा है नतीजे के उन्वान से कि हर मोमिन पर लाजिम है, नहीं कहा हुसैन इब्न अली पर लाजिम है, लियर गबल हुसैन इब्न अली नहीं कहा है, हर मोमिन पर लाजिम है अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है तो लिकाउल्लाह के लिए शर्त है कि हक पर अगर अमल ना हो रहा हो और बातिल से रोका ना जा रहा हो आगे आए और अपनी जान को निछावर कर दे। बस अज़ान मोहतरम, बिलाखिर नतीजा इन्नी ला अरल मौत इल्लल हयात इल्लस सआदा इल्लस शहादा, तीन तरीकों से रिवायत हुई है, ये सबको जानते हैं हमारा, बहुत मुख्तसर करते हुए तीसरा वो फैक्टर के जो इल्लत फाइली के साथ हम और आप अटैच कर सकते हैं और अटैच करना भी चाहिए, अहले कूफा का दावत करना, खतूत पर खतूत आना, ये तीन फैक्टर हैं। मुझे तफसील में नहीं जाना, बहुत कुछ कहा जा सकता है इस हवाले से, دوسری چیز کہ جو فلاسفہ اور حکما کے لحاظ سے تمہید جو ہم نے باندھی علت غائی ہے. ہدف کیا تھا؟ ہدف ایک جملے کے اندر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. امت اسلامیہ کے ضمیروں کو کہ جسے ہم اور آپ ادبی زبان میں کہتے ہیں وجدان, اسے بیدار کرنا تھا. اور یقیناً آج عزاداری جو ہم اور آپ سوا دو مہینے ظاہری طور پر انجام دیتے ہیں اس کا ہدف بھی یہی ہے. اور میں نے آغاز کلام میں کہا کہ اگر حسین ابن علی 1400 سال پہلے سن 61 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایسی قوم کہ جو مردہ کا بہت معذرت کے ساتھ جو زندہ نہیں اس کا غم منائے وہ قوم بزدل ہے. غم منانے والے بزدل ہوتے ہیں, تصور ہمیں یہ دیا جا رہا ہے. اور میں نے آغاز کلام میں کہا بغیر کسی جھجک کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ کانسیپٹ موجود ہے اور دیا جا رہا ہے مسلسل کہ جسے ہم اور آپ جانتے ہیں سلو پوائزن, آہستہ آہستہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں اور اذہان میں, خصوصی طور پر جوانوں کے ذہن میں یہ چیز ڈالی جا رہی ہے کہ وہ قوم مردہ ہوتی ہے کہ جو مردہ کا غم منائے. لیکن میں عرض کر چکا کہ حسین ابن علی مردہ نہیں اس لیے کہ حسین ابن علی فلاں ابن فلاں نہیں, شخصیت اور انسانیت کا نام ہے. حسین ابن علی کی جو تصویر ہے وہ زندہ تصویر ہے, مردہ تصویر نہیں. یہ علت غائی, میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی, اسکپ کرتا ہوا آگے جا رہا ہوں. علت مادی کیا ہے؟ کون سی چیزیں ہیں کہ جس نے کربلا کو تشکیل دیا؟ چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ علت مادی کون کون سی چیزیں آپس میں یکجا ہوئی ہیں تب جا کر کوئی چیز معرض وجود میں آتی ہے, صورت دکھاتی ہے. کربلا کو دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو چند چیزیں دکھائی دیں گی. سب سے پہلی چیز مکتبی رہبر, بہت توجہ کا طالب ہوں, مکتبی رہبر ہے. ایسا رہبر کہ جو دل سوز ہے, ایسا رہبر کہ جو فداکار ہے. وہ قوم کبھی بھی پسپائی کا شکار نہیں ہوتی اور پسپا نہیں ہوتی کہ جس کا رہبر یہ خصوصیات رکھتا ہو. مکتبی ہو, دل سوز ہو اور فداکار, یہ حسین ابن علی یقین در یقین کے ساتھ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہی تھے. خود مولا نے اس وقت جب جناب مسلم ابن عقیل کو اہل کوفہ کے جواب میں روانہ کیا تو باقاعدہ اپنی نسبت اس مطلب کو اس خط کے اندر تحریر کیا اہل کوفہ کے نام, مل امام الا العامل بالکتاب. اہل کوفہ یاد رکھو, امام امام نہیں ہوتا مگر کتاب پر عمل کرنے والا. امام امام نہیں ہوتا والآخذ بالقسط, انصاف کو سامنے رکھنے والا اور ہاتھ میں لینے والا, ہمیشہ منصف ہوتا ہے. والدائن بالحق, حق کو ادا کرنے والا ہوتا ہے. امام امام نہیں والحابس نفسہ علی ذات اللہ, وہ اپنے نفس کو محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے. کس کے مقابلے پر؟ علی ذات اللہ. مہارتن ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض ہے, خدا نے جو کہا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. امام وہ نہیں کہ خدا کچھ کہے اور بندہ کچھ کرے. یہ ایک کہ مکتبی رہبر دلسوز اور فداکار. دوسرا نقطہ علت مادی کے لحاظ سے ملاحظہ کریں, صدق اور صداقت, فراست اور دانشمندی کوٹ کوٹ کر جو ہے کربلا میں نظر آتی ہے. اور پھر عرض کروں گا تذکرن, کربلا کو نہیں پہچان سکتے جب تک صاحب کربلا पहचान में ना आए। करबला कुछ नहीं, करबला कुछ भी नहीं। थोड़ी सी देर के लिए सपोज फर्ज करें कि ये सानेहा रूनुमा ना होता, लिल्ला बताइए क्या सरजमीन करबला ना होती? सरजमीन इराक पर वो टुकड़ा के जो करबला के नाम से जो है मौजूद है, थोड़ी सी देर के लिए, फर्ज महाल महाल नहीं है। क्या हुसैन इब्ने अली अगर कयाम ना करते, सैयद शहदा अगर कयाम ना करते तो करबला की सरजमीन ना होती? यकीनन होती, लेकिन आया इसी कदासत के साथ, इसी बुलंदी के साथ? ना। कोई इसको कदासत किसने दिया? सिद्क़ व सदाकत और फरासत और दानिशमंदी है हुसैन इब्न अली। कूट कूट कर बहुत कुछ कहा जा सकता है, मजबूर हूं टाइम के हाथों। तीसरी चीज जो इल्लत मादी के लिहाज से हम और आप तसव्वुर कर सकते हैं, मौके पर और महल पर क्याम करना। मौके और महल के साथ अगर हम और आप क्याम करें, जिस उनवान से भी, जिस हदफ को पाने के लिए भी, डेफिनेटली नतीजा पाएंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। वो अफराद के जो नेगेटिव सोच रखते हैं और नेगेटिव सोच रखकर हरकत को अंजाम देना चाहते हैं, अपने अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं, बेमौका और बेमहल, कि जिसको हमारा आप कहते हैं बेमौका व बेमहल, हरकत को अंजाम दें तो यकीनन उस हदफ तक पहुंचते हैं। पॉजिटिव भी काम ऐसा ही है, बहुत आसान जबान में। मौला का कियाम ना इफराद था ना तफरीद, तवाजुन के साथ था। मौके पर, और यहां बहुत कुछ कहा जा सकता है कि इंशाल्लाह आने वाले स्पीकर जो है इंशाल्लाह आपकी खिदमत में शायद अर्ज करें। चौथा नुक्ता इल्लत मादी के लिहाज से, और उसके बाद इल्लत सूरी को बयान करके मुख्तसर तौर पर रफ जहमत होगी। चौथा और आखिरी नुक्ता इल्लत मादी के लिहाज से, वो मटेरियल क्या है, वो चीज क्या है कि जिसके जरिए से करबला माराज वजूद में आई। ऐसे अफराद का साथ होना जिनके कुलूब अरशुर रहमान थे, बहुत काबिल गौर है ये। किसी भी माशरे के अंदर किसी भी कयाम को माराज वजूद में आना है, तनहार रहबर काफी नहीं है। जब तक उसका साथ देने वाला या उनका साथ देने वाला कोई ना हो, रहबराने वक्त रहबर नहीं होते और कयाम करने वाले नहीं बनते जब तक उनकी फिक्र के हामी अफराद मौजूद ना हो। और वो फिक्र कैसी, अहले करबला की फिक्र कैसी थी हम और आप सब जानते हैं। कल्बुल मोमिन अरशुर रहमान हुआ करता है, और हम और आप सुनते हैं और जानते भी हैं और समझते भी हैं। एकाश के दर्क कर पाए कि मोमिन उसका कल्ब अरशुर रहमान होता है। अहले करबला असहाबे करबला कुलूब रखते थे अरशुर रहमान वाले, लिहाजा, और हमारा आप सब जानते हैं कि इसके लिए दलील भी मौजूद है। एहसासाती गुफ्तगू नहीं है। शब आशूर मौला ने एक ही कहा जुमला, उस वक्त के जब तमाम असहाब ने इनकार कर दिया जाने से, तो मौला ने कहा कि मुझे तुम पर इफ्तिखार है, ना मेरे बाबा को ना मेरे नाना को ना मेरे भैया को ऐसे असहाब नहीं मिले जो तुम हो। अगरचे बाद में भी एक रिवायत के मुताबिक कि ये पहले कह दिया मौला ने, और उसके बाद मौला ने उनसे कहा कि मैं बैत का तौक तुम्हारी गर्दन से उतारे देता हूं, जाओ रोजे महशर ना मेरे बाबा तुमसे पूछेंगे ना मेरे नाना और ना मेरी मादर गिरामी। ये दलील है कि तमाम के तमाम असहाब कुलूब थे अरशुर रहमान वाले। बस अजीजों, ये इल्लत मादी और आखिरी और फाइनल इल्लत सूरी, कि अब जो है करबला महाराज वजूद में आ रही है, तस्वीर क्या है उसकी? कमीज की तस्वीर अगर किसी को बतलाना चाहे कि कमीज और पिराहन कैसा होता है, आगाज मतलब मैंने जो मिसाल अर्ज की थी गिलास की और कमीज की, का कमीज किसे कहते हैं? तस्वीर तो बतलाओ। का आस्तीने, ये दामन, आगे से चाक, गरेबान, बटन लगे हुए होते हैं, सब चीजें, हर चीज जिसका तस्वीर है, ये गिलास, ये तस्वीर है। खूब, करबला की तस्वीर क्या है? खो, जब मौलाना आपने ये कह दिया कि तीनों इल्लतें मौजूद, तब तस्वीर क्या है इसकी? इल्लत सूरी क्या है इसकी? बस एक जो है आयत और उसके जिम्न में जो है आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, अपने अल्फाज में पहले बयान कर दूं। सूरत इसकी रंगे इलाही है, सिबगतुल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, सूरह बकरा आयत नंबर 138। खुदा ने क्या खूब अंदाज में कहा है, और अजीब है, मौका नहीं मैं तफसील से अर्ज करता कि रंगे इलाही किसे कहते हैं। खुदा कहता है सिबगतुल्लाह, बाज ने इसे जो है ताबीर किया सिबगत अल्लाह से, एराब के आधार से, सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, का रंगे इलाही जानते हो क्या है? का रंगे इलाही है। वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, रंगे इलाही, क्या खूब रंगे इलाही है। जिस वजूद पर यह रंग आ जाए, वो रंग उस वजूद को छोड़ता नहीं। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, रंग दो किस्म के होते हैं। जब हम और आप अपनी दीवारों को या दरवाजों को रंग करते हैं तो रंग दो किस्म के हैं, पुख्ता रंग और कवी रंग एक, और दूसरा कमजोर रंग, जईफ, ना पुख्ता। ना पुख्ता वो होता है कि हम दीवार से जो अपना टेक लगा के बैठे तो रंग हमारे और आपके जो है कपड़ों पर लग जाता है, हाथों पर लग जाता है। लेकिन पुख्ता अगर हो तो वो रंग दीवार के साथ पैवस्त है, इस तरह से कि दीवार अगर टूट भी जाए वो रंग छोड़ता नहीं उसे। का करबला क्या है? का कैसी शनाख्त क्या है उसकी? का अल्लाह के रंग को देखो, करबला का रंग नजर आएगा। अल्फाज नहीं, करबला रंगे इलाही रखता है, और मुफस्सरीन ने इस रंगे इलाही के हवाले से मुख्तलिफ तफसीरें की हैं। सिर्फ एक जो है चीज बयान करूंगा कि रंगे इलाही यानी मकतब खुदा दीन इस्लाम। बस असी सुन, ये चंद चीजें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। बहुत कुछ मुझे बयान करना था और जाहिरन मुझे लग रहा है कि मैंने टाइम ज्यादा ले लिया जो मुझे दिया गया था, बहुत माजरत का मुतमन्नी हूं। करबला यानी रंगे इलाही, हुसैनियत यानी रंगे इलाही, हुसैनियत यानी शख्सियत, हुसैनियत यानी इंसानियत। आज ये कमाल इंसानी को अगर हमें और आपको मुलाहिजा करना है तो हुसैन इब्न अली की शख्सियत को मुलाहिजा करें कि जिसके साये में हमें और आपको करबला भी नजर आएगी, और जब करबला नजर आएगी तो हम और आप सब जानते हैं कि वो रंग कि जिसे मैंने रंग इलाही से ताबीर किया आयत का सहारा लेते हुए, हम और आप इस अंदाज में जानते हैं कि जो अक्सर और बिस्तर मेंबर से सुनते हैं, कुल्लो यौमिन आशूरा कुल्लो अर्ज़िन करबला। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।